करने से क्या, एक दूसरे संप्रदाय का अगर आप बैर विरोध करो तो फिर झगड़े होते हैं और फिर सर्वधर्म सम्मेलन का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। सर्वधर्म सम्मेलन का मतलब सब एक साथ एक मंच पर आ जाओ और मिलजुल करके कुछ अपना बताओ, दुनिया को कोई संदेश दो अच्छा वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता, विवाद हो जाता। और संयोग से क्या हुआ कि फिर एक किसी व्यक्ति ने जैन मत के बारे में कुछ बोल दिया, उसको लगा कि जैन लोग तो अल्पसंख्यक है, ये क्या कर पाएंगे यहां पर, इनके बारे में बोल दो कुछ, बड़े बड़े जो लोग हैं उनके बारे में चुप रहो, और जैनियों के बारे में उन्होंने बोल दिया ऐसा कि ये नास्तिक मत है। बोले जैन मत, जैसे चार्वाक और बौद्ध मत को उन्होंने नास्तिक मत माना है, क्योंकि उन्होंने क्या है, ये चार्वाक जैन और बौद्ध ये तीन ऐसे दर्शन है कि इन्होंने ईश्वर को कर्ता धर्ता नहीं माना, ईश्वर को तो माना है लेकिन ईश्वर दुनिया के कर्ता धर्ता है ये बात जैन मत में नहीं मानी गई, बौद्ध मत में नहीं मानी गई, चार्वाक मत में नहीं मानी गई। तो अब ऐसी स्थिति में उन्होंने ऐसे नास्तिक कह दिया जैनों को, तो फिर जैन विद्वान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सभापति के निर्देश का उल्लंघन किया गया है, इसलिए अब जैन विद्वान होने के नाते मुझे इनके आक्षेप का उत्तर देना पड़ेगा, मैं सभापति की अनुमति चाहता हूं। सभापति ने बोला कि मेरे निर्देश का उल्लंघन किया गया है, इसलिए मैं जैन विद्वान को अनुमति देता हूं कि वो इनके आक्षेप का उत्तर दे। अब इनने उत्तर दिया कि जो वेदों को माने सो आस्तिक और न माने सो नास्तिक, ये तो कोई आस्तिक और नास्तिक का प्रामाणिक लक्षण नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो सभी लोग बोलते हैं, अपने हाथ की बनी हुई रोटी को सब अच्छा बोलते हैं तो ये तो पक्षपात हो गया, कोई निष्पक्ष लक्षण होना चाहिए जो सर्वमान्य हो, यदि किसी के पास हो तो फिर वो बोल सकता है। तो उस टाइम सब चुप थे, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि देखो इस्लाम को मानने वाले समझ रहे थे कि भाई इसमें हमारा लक्षण जो है वो भी एक संप्रदाय से बंधा हुआ लक्षण है, ईसाई मजहब को मानने वाले भी जानते थे कि भाई अब यहां पर भी बिलीवर और डिसबिलीवर ये भी एक संकीर्ण दायरे का शब्द हो जाता है। तब फिर इसने इन्होंने बोला विद्वान ने कि जो अस्थि को माने सो आस्तिक, आस्तिक शब्द पर ध्यान दीजिए, ठक प्रत्यय हुआ है अस्थि के साथ में, अस्थि शब्द में ठक प्रत्यय कर दो तो फिर आस्तिक शब्द बनता है। मतलब ये हुआ कि अस्थि विद्यते यस्य श्रद्धायाम स आस्तिक शब्द, व्याकरण की उत्पत्ति से देखो आप कैसे बनता है आस्तिक शब्द, तो बोले जिसकी श्रद्धा में अस्थि है वो आस्तिक है। और फिर आगे और खुलासा उसका विस्तार, इसका तो और खूब विस्तार कर सकते हैं। हमारे गुरुजी ने एक बार बोला था कुंडलपुर में कि जो अपने को अस्थि मानता है वो मिथ्या दृष्टि, और जो अपने को अस्थि मानता है वो सम्यक दृष्टि। क्या सुंदर बात है, मतलब जो अपने को शरीर मानता है, अस्थि तो उपलक्षण हो गया, तो शरीर क्या है, अस्थि मांस आदि का पुंज है, तो अपने को अस्थि समझने वाला मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को दूसरे शब्दों में अपन नास्तिक कह सकते हैं, कोई आपत्ति है, कहीं आपत्तिजनक नहीं है, तो वो मिथ्या दृष्टि हो गया। और अपने को अस्थि मानने वाला, अस्थि यानी चैतन्य ध्रुव सत्ता वाला पदार्थ मानने वाला आस्तिक है, सम्यक दृष्टि। तो ऐसी जब व्युत्पत्ति की उन्होंने, तो फिर उन्होंने पूछा भी कि भाई सब लोग सहमत होगी नहीं इस बात से, शब्द व्युत्पत्ति क्या व्याकरण में किसी अन्य प्रकार से संभव है आस्तिक शब्द की, तो फिर बोले नहीं ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उचित है। तो फिर बोले जैन लोग कहां नास्तिक हुए, बोले हम लोग तो जो जैसा पदार्थ है उसको वैसा स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर इसमें नास्तिकता कहां से आ गई। तब फिर वहां सबको मानना पड़ा कि नहीं जैन लोग आस्तिक है, ये नास्तिक दर्शन नहीं है। और आर्य समाज में भी उन्होंने जैनों को नास्तिक माना, क्योंकि ईश्वर कर्ता धरता है इस बात को जैन स्वीकार नहीं करते। और फिर एक विद्वान ने तो बड़ी सुंदर बात कही है कि ईश्वर कर्तृत्व को मानने वाले और जैन दर्शन को मानने वालों में थोड़ा सा फर्क है। कितना फर्क है, थोड़ा सा लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि ईश्वर कर्तृत्व मानने वाले ये मानते हैं कि ईश्वर से संसार की शुरुआत हुई, और जैन दर्शन ये मानता है कि ईश्वर में संसार का अंत हुआ। नहीं आया समझ में? यानी जब संसारी प्राणी ईश्वर बनता है तो संसार का अंत हो जाता है। कौन से संसार का? जगत का अंत नहीं होता, जगत तो अनादि निधन है, लेकिन अपना जो संसार है, अपना संसार क्या है? अपनी चार गतियां, अपने 84 लाख योनियां, ये अपना संसार है। तो अपने संसार का अंत ही ईश्वर है। और उनकी मान्यता में क्या है? ईश्वर अकेला था, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, अनेक रूप बन जाऊं, ऐसे उनको इच्छा हुई, क्योंकि अकेले में सूनापन लग रहा था उनको। ऐसा उनका स्पष्टीकरण ये रहता है कि अकेले अकेले उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उनने सोचा कि चलो सृष्टि की रचना करें। अब फिर सृष्टि रचना करने के बाद उसने कई प्राणियों की रचना की, और फिर अंत में मनुष्य की भी रचना की। तो कुछ कवियों ने उन पर आक्षेप भी लगाया कि भाई दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, और दुनिया में आदमी क्यों बना लिया तुमने? तो ऐसा भी कुछ कवियों ने लिख दिया। तो उस मान्यता के अनुसार ईश्वर से संसार की शुरुआत होती है, और जैन दर्शन के अनुसार ईश्वर में संसार समाप्त होता है। यानी जहां संसार का अंत है उस बिंदु का नाम है ईश्वर, और उनके मत में जहां संसार का प्रारंभ है उस बिंदु का नाम ईश्वर है। तो कितना फर्क पड़ गया दोनों में। तो इस प्रकार उन्होंने क्रिएशन को लेकर के तीन मान्यताओं का उल्लेख किया है। अब चार्वाक मत के अनुसार तो कुछ नहीं है, सब खाओ पियो मौज करो, ये मान्यता, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजे उड़ाओ। अब ये मान्यता ऐसा नहीं है, आप मत समझना कि भाई हम जैन परिवार में पैदा हो गए तो हमारी मान्यता तो अलग है। कभी कभी परिवार किसी मान्यता का होता है और अपने अंदर की मान्यता कुछ और होती है। इसीलिए कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि अजैन भी होते हैं और जैन भी होते हैं। और जैन मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना अधिक जटिल कार्य इसलिए होता है क्योंकि वो कभी अपने आप को मिथ्या दृष्टि नहीं समझता। जैन मिथ्या दृष्टि क्या समझता है अपने आप को? मिथ्या दृष्टि। वो अपने आप, अब जो सम्यक दृष्टि समझे अपने आप को, उसको कैसे सम्यक दर्शन हो? वो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है, तो उसको समझाना ज्यादा कठिन होता है। लेकिन फिर भी कालादि लब्धि के निमित्त से किसी का भी कभी भी परिवर्तन संभव है, इसलिए स्वाध्याय आदि चलते रहने देना चाहिए। क्या मालूम किस समय किसका परिवर्तन हो जाए, किसका जीवन सुधर जाए। तो पहला सम्यक दर्शन जो सराग सम्यक दर्शन है, श्रद्धा अपने आप में सराग वीतराग नहीं है, लेकिन ये एक अपेक्षा से कथन है कि जैसे कोई जीव है उसकी श्रद्धा है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन श्रद्धा का ही तो नाम है। रागी जीव का जो सम्यक दर्शन है उसको सराग सम्यक दर्शन कह दिया, वीतराग का जो सम्यक दर्शन है उसको वीतराग सम्यक दर्शन कह दिया। तो प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य, आस्तिक्य का मतलब क्या होता है? आस्तिकता। सर्वज्ञ प्रणीत तत्वों पर विश्वास होना, श्रद्धान होना आस्तिकता है, अस्ति को मान लेना, तो ये उसकी अभिव्यक्ति का लक्षण है सराग सम्यक दर्शन। आत्म विशुद्धि मात्र मित्रत, और दूसरा जो वीतराग सम्यक दर्शन है वो अपनी आत्मा की पवित्रता मात्र है, निर्मलता। उस श्रद्धा की निर्मलता का नाम ही वीतराग सम्यक दर्शन। और इसको तत्वार्थ वार्तिक में क्षायिक सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन कहा। समय सार में निश्चय चारित्र के साथ जो सम्यक दर्शन रहता है वीतराग चारित्र के साथ, उसको वीतराग सम्यक दर्शन कहा। तो ये सब मतलब ग्रंथकारों की अलग अलग विवक्षा है। किसी प्रसंग में किसी विवक्षा को मुख्य कर दिया जाता है, किसी प्रसंग में उसको गौण कर दिया जाता है। अब ये तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शन का अर्थ समझ लेने के बाद अपन एक चर्चा और करना चाहेंगे इस पर से कि सम्यक दर्शन की जो भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं उनमें सामंजस्य कैसे बैठा है। अभी तो अपन ने तत्वार्थ सूत्र के अनुसार तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन समझा, तत्व सहित जो अर्थ यानी पदार्थ है इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये बात समझ में आ गई। अब अन्य अन्य ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से सम्यक दर्शन का विवरण मिलता है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन, याद है आपको कभी रत्नकरण में आता है तीसरा काव्य, तीसरे काव्य में तो धर्म का आता है स्वरूप, और श्रद्धानम परमार्थानम सम्यक दर्शन का जहां स्वरूप बताया, परमार्थानम आप्तागम तपोभृतम, परमार्थ यानी यथार्थ जो आप्त आगम और तपस्वी हैं उनका श्रद्धान सम्यक दर्शन। और दूसरी जगह देखो तो सम्यक दर्शन किसको कहा, जीव अजीव आदि नौ पदार्थों को निश्चय से जानना सम्यक दर्शन, ये समयसार की परिभाषा होगी। भूयत्थेणाविगदा जीवा जीवाय पुण्य पावन च आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मत्तम, ये सम्यक दर्शन की परिभाषा कही थी समयसार में। और समयसार कलश में सम्यक दर्शन किसको कहा, एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यतस्य आत्मनः शुद्ध ज्ञान घनस्य दर्शन मिह द्रव्यांतरेभ्य पृथक, सम्यक दर्शन में तदेव नियमाद आत्मा चतावानयम तन्मुक्त्वा नव तत्व संतति मिमाम आत्मायम एकोस्तु नः। समयसार कलश में छठा कलश जो है उसमें आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं सब द्रव्यों से भिन्न एक अपनी आत्मा का जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि पूरे नौ पदार्थ छूट जाएं और एक आत्मा हमें प्राप्त हो जाए, तो आत्मश्रद्धान को सम्यक दर्शन कह दिया। और कर्म सिद्धांत के ग्रंथों में क्या कहा, दर्शन मोहिनी की जो प्रकृतियां हैं उनका उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम, ये करण होते हैं, दस प्रकार के करणों में ये उपशम करण क्षय करण क्षयोपशम करण, इन करणों से उनके उदय का अभाव हो जाना, ये जो प्रकृतियां दर्शन मोह संबंधी कर्मों में मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, तो ये जो प्रकृतियां हैं सात प्रकृतियां इनका उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम से होने वाली जो आत्मा में निर्मलता प्रकट होती है उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब इतने सारे सम्यक दर्शन है शास्त्रों में अलग अलग अनुयोगों में, तो फिर अपन क्या करें, कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाए, तो वास्तव में देखा जाए सूक्ष्मता से अंदर जाकर के आप देखेंगे तो फिर ये सम्यक दर्शन का जो वर्णन है वो अलग अलग अनुयोगों में अलग अलग प्रकार से किया गया है। सम्यक दर्शन नाम की जो वस्तु है या भाव है वो अलग नहीं है, वो तत्वार्थ श्रद्धानम वाला सम्यक दर्शन भी वही चीज है, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन भी वही चीज है, और दर्शन मोहिनी के उपशम क्षय क्षयोपशम से होने वाली निर्मलता रूप जो सम्यक दर्शन है वो भी वही है, और नौ पदार्थों को यथार्थ रूप से जान लेना भी वही है, और आत्मश्रद्धान भी वही सम्यक दर्शन है। कथन शैली में भिन्नता है लेकिन सम्यक दर्शन एक है। इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन में ये बात पहले अपने अंदर बैठ जाए, क्योंकि अब ये जो मोक्ष शास्त्र है, तत्वार्थ सूत्र का दूसरा नाम क्या है, मोक्ष शास्त्र, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अलग है, ये मोक्ष शास्त्र है, तो मोक्ष शास्त्र में पहला अवयव जो है वो है सम्यक दर्शन। और अब इसी सम्यक दर्शन को और विस्तार से समझने के लिए आगे के सूत्रों में आचार्य उमा स्वामी महाराज और वर्णन करेंगे और पूज्यपाद स्वामी उसका और स्पष्टीकरण देंगे। अथ तत् सम्यक दर्शन जीवादि पदार्थ विषय कथम उत्पद्यते इति आह अत आह। अब कोई शंका करता है कि वह जो सम्यक दर्शन है, ग्रंथ का प्रारंभ तो आप जानते ही हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी ये मोक्ष का उपाय है, अब इस मोक्ष के उपाय में सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है उसका स्पष्टीकरण पिछले सूत्र में हुआ था, और उसमें क्या कहा था तत्वार्थों का सिद्धांत सम्यक दर्शन। तत्वार्थ का अर्थ क्या था? भाव, तत्व यानी भाव और अर्थ यानी पदार्थ। तो भाव सहित पदार्थों का सिद्धांत सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है तो उसके बारे में कहते हैं, तन निसर्गा दधिगमाद्वा। सूत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं, तन निसर्गा दधिगमाद्वा। तत् सम्यक दर्शन, तत् माने वह, वह कौन? सम्यक दर्शन जो पिछले सूत्र में था ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत् सम्यक दर्शन, वह सम्यक दर्शन निसर्गात, निसर्गात यानी बगैर उपदेश के, पूर्व जन्म के किसी संस्कार वश वर्तमान में कोई ऐसी बात हो जाती है, घटित हो जाती है, तो फिर उत्पद्यते, उत्पन्न हो जाता है। अधिगमात्वा, अधिगमात, अधिगम यानी ज्ञान होता है, अथवा उपदेश से जब जानकारी मिलती है तत्वों की, तत्वार्थों की, तब सम्यक दर्शन हो जाता है। वैसे इसके जो बाह्य निमित्त की अपेक्षा से जो भेद हैं, प्रकार हैं, उनका आगे चल करके इसमें वर्णन स्वयं आचार्य महाराज करेंगे। बहुत सुंदर ग्रंथ है, और हमारे गुरु के गुरु कहते थे कि इसको 108 बार पढ़ना चाहिए, 108 बार। कुछ विषय तो कठिन होते ही हैं, लेकिन कठिन समझ करके आप डर जाएं और फिर कायरता का प्रदर्शन करें, ये तो फिर उचित नहीं है। आपकी गृहस्थी में भी कुछ दिन तो कठिन होते हैं, छोड़ देते हैं कि आप दीक्षा ले लेते हैं, अभी तक तो आप गृहस्थ हैं। तो वो जो कठिनाई के जो प्रसंग होते हैं उनको भी निकालना चाहिए, मतलब उनको भी लगाना चाहिए, उसका भी अर्थ समझना चाहिए, और धीरे धीरे अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। फिर आपके पास दूसरे लोग सजेशंस लेने आते हैं कि भाई ऐसे मुसीबत आती है गृहस्थी में तो क्या करना, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो दुनिया देखी, आपके बाल पक गए, कुछ मार्गदर्शन हमें भी दे दो। तो फिर आप दूसरों को भी समझाते हैं कि ऐसी स्थिति में ऐसा करना। उसी प्रकार स्वाध्याय करते करते जब कठिन प्रसंग आते हैं तो डरना नहीं, कोई चारा नहीं है, आप कहीं भटक लो दुनिया में, अंत में जिनवाणी माता की शरण में ही आना पड़ेगा। निसर्ग स्वभाव इत्यर्थ, निसर्ग माने स्वभाव। अब निसर्ग को मराठी भाषा में या फिर यहां प्रकृति को भी निसर्ग कहते हैं, प्रकृति जो है उसको भी निसर्ग कहते हैं, और उसको भी एक शक्ति जैसा मान लिया है लोगों ने, कुदरत, कुदरत बोलते हैं ना उर्दू में, उसका नियम अटल होता है, ये सारी बातें वो प्रकृति के जो नियम होते हैं, कायदे होते हैं, नेचर। यहां पर निसर्ग का स्वभाव, स्वभाव का मतलब यहां पर ऑटोमेटिक समझ लो आप, बिना उपदेश के जो हो जाए वो निसर्ग है। अब सम्यक दर्शन के दो भेद होते हैं, वैसे एक तो सम्यक दर्शन सामान्य, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। अब दो भेद करो तो तीन प्रकार से दो भेद हो सकते हैं, एक तो ये आगम के जो दो भेद हैं, उत्पत्ति की अपेक्षा से दो भेद। अगर बिना उपदेश के सम्यक दर्शन उत्पन्न हो रहा है, जैसे कोई जीव यहां से क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि था, लेकिन सम्यक दृष्टि होने के पूर्व आयु को बांध चुका था, नीचे चला गया, तो नीचे जाते समय क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन तो साथ नहीं जाता। छेड़ाला में आपने जरूर पढ़ा है, प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष वान भवन षण्डारी। वहां पर प्रथम नरक मतलब पहले नरक तो जा सकता है सम्यक दर्शन के साथ, है ना, पर पहले नरक अब बारीकी से अपन देखें तो फिर सिद्धांत की दृष्टि से पहले नरक हर सम्यक दृष्टि नहीं जाता, केवल दो प्रकार के सम्यक दृष्टि पहली पृथ्वी तक के जा सकते हैं। एक तो वेदक, कृतकृत्य वेदक जिसको कहते हैं, वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की अंतिम घड़ियों में होता है। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है और क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, तो बस उसके जो आखिरी क्षण होते हैं उस समय जो बनती है स्थिति, कृतकृत्य वेदक उसका नाम होता है। वहां अगर किसी की आयु पूर्ण हो गई और पहले उसने नरक का बंद बांध लिया है तो फिर वो साथ लेकर के जाएगा। और दूसरा विकल्प क्या है कि जो क्षायिक सम्यक दृष्टि, राजा शरणिक है, कल की कथा में था, स्पष्ट था कि क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उसने, तो अब जब यहां से मनुष्य आयु पूर्ण की और नरक गति में गया तो फिर वहां पर भी वो प्रथम नरक तक के गया और साथ में क्षायिक सम्यक दर्शन को ले गया। लेकिन बाकी जो सम्यक दर्शन, उपशम सम्यक के साथ तो मरण नहीं होता, द्वितीय उपशम अगर हो श्रेणी पर जाने वाले मुनियों का तो फिर उनको नीचे वाली गति नहीं होती, वो सिर्फ देवायु को छोड़कर और कहीं जाते नहीं। तो यहां अगर कोई जाता है, कौन सा, हाँ वो तो श्रेणी जानी, वो तो महाव्रत ही नहीं हो सकता, महाव्रत ही नहीं ले सकता। कल बात आई थी ना कि व्रत कौन धारण कर सकता है, याद है आपको, बोलो। अच्छा, व्रत कौन नहीं धारण कर सकता ये बोलो, जिसने देवायु को छोड़कर और किसी आयु का बंध बांध लिया हो, भले वो मनुष्य आयु का भी बंध बांधा हो, वो इस भव में व्रती नहीं हो सकता मरते दम तक, क्योंकि व्रत मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाते, मनुष्य को ऊपर उठा देते हैं। हाँ, क्योंकि बाल तपान से दैवस्य, उसमें देवगति के जो आश्रव बताए हैं वहां पर स्पष्ट है, सराग संयम संयमा संयम आकाम निर्जरा बाल तपान से दैवस्य। और बाल तप में मतलब उपलक्षण से अपन बाल व्रत ले लो, मिथ्या दृष्टि के व्रत भी नहीं ले सकते। वो परिणामों पर निर्भर करेगा, अगर उनका द्रव्य संयम अखंड है, अब इसमें भी विकल्प बन सकते ना, पिच्छी धारण करने मात्र से द्रव्य संयम परिपूर्ण हो ये कहा नहीं जा सकता। तो अगर पिच्छी धारण करने के बाद पूरी विधिवत चर्या चल रही है तब तो फिर देवायु के सिवाय कोई दूसरी आयु नहीं है। लेकिन देवायु में वैमानिक देव होना अलग बात है और फिर देव होना अलग बात है, जरूरी नहीं है कि सारे व्रती वैमानिक देव होते हैं। पंचम काल में या चतुर्थ काल में भी बहुत सारे ऐसे व्रतधारी होते हैं जिनकी आत्मा में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो पाती, और बगैर सम्यक दर्शन के यदि तप उतना प्रबल है और फिर लेश्या की विशुद्धि अधिक है तब तो नवम ग्रह वेग तक जाने की संभावना है। यदि नहीं है, यदि परिणामों में संक्लेश भाव भी विद्यमान रहता है तो फिर व्रतों के साथ भी भवनत्रिक में उत्पत्ति संभव। बहुत सारे व्रती आयु पूर्ण करके अभी वर्तमान में व्यंतर आदि पर्यायों में उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। वो लेश्या की विशुद्धि साथ में आवश्यक है। व्रतों की क्रियाएं निर्दोष जरूर हो सकती है लेकिन अगर अंदर परिणामों में लेश्या उतनी निर्मल नहीं है तो फिर उसके अनुसार आयु का अनुभाग आदि बंधेगा। तो वो भवनत्रिक में जाने में कोई वो नहीं है, जा सकते हैं कोई भी। सबसे अच्छे तो कोई नहीं है वैभव की अपेक्षा से कहते हैं, धर्णेन्द्र का वैभव बहुत विस्तृत होता है। अब जैसा भी कहो, फिर भवनवासी को पहले क्यों लिखा गया, क्या कि अगर खोटे पूछे अपन तो फिर सबसे खोटा तो वो माना जाएगा जो दूसरों को लड़ाए। वो भवनवासी देवों में एक अंबावरीश जाति के देव होते हैं, वो नरकों में जा जाकर के लड़ाते हैं, बताइए और वहां मान लो तीसरी पृथ्वी में जाकर के लड़ा रहे हैं, दो राजू नीचे है तीसरी पृथ्वी, और उनको आयु का बंध हो रहा है तिरियंश आयु का, है देव लड़ा रहे हैं नरक वालों को और आयु बांध रहे तिरियंश गति की। तो इसी ग्रंथ में आगे चल करके स्पर्शन मार अनुयोग आता है, जहां पर उसमें खुलासा है कि वह नीचे तीसरी पृथ्वी में लड़ाने वाला भवनवासी अंबावरीश देव वहां से मरकर सीधे नौ राजू ऊपर, सिद्धशिला जो है ना, वहां जाकर पृथ्वी का एक जीव बन गया, एकेंद्री जीव, अथवा वातवलयों में अंबु का एक, जल का एक जीव बन सकता है, अग्नि वायु में नहीं जाता, अग्नि वायु में नहीं जाता, लेकिन बाकी उसमें चला जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि भवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी और दो स्वर्ग तक के, पहले दो स्वर्ग तक के देव परिणामों में संकलेश के प्रभाव से तिरियंश आयु का बंध बांध कर पृथ्वी, जल और वनस्पति इन तीन स्थावरों में भी जन्म ले सकते हैं। और पंचेंद्रीय तिरियंश भी बन सकते हैं, उसका निषेध नहीं है, मरकर कुत्ता बन जाए असंभव नहीं है, बन सकता है। और दूसरे स्वर्ग के ऊपर वाले जो देव हैं उनके अंदर एकेंद्रीय की आयु बांधने वाले परिणाम नहीं होते, परिणाम यानी भाव, ऐसे भाव नहीं होते उनमें कि वो एकेंद्रीय जीवों की आयु का बंध बांध सके, स्थावरों में उत्पत्ति नहीं होती उनकी, त्रस्त जीवों में उत्पत्ति तो होती है, त्रस्त जीवों में तो उत्पत्ति होती है, हाँ वही बता रहे, लेकिन तिरियंश गति में वो सैनी पंचेंद्रीय ही होंगे, तिरियंश आयु का बंध बांधेंगे। कहां तक के देव, तो बारहवें स्वर्ग तक के देव। देखो कितनी विचित्र बात है, और इसका एक नमूना अपन ने उस रविवार को सुना था, याद है आपको, भरत और त्रिलोक मंडन हाथी की कथा। भरत और त्रिलोक मंडन दोनों छठे स्वर्ग के देव थे पिछले भाव में, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के देव थे दोनों, दस सागर की आयु वाले, और वहां से आयु पूर्ण करके जब यहां आए तो फिर दो में से एक, और ये कई जमाने से, मतलब भव भवांतर आदिनाथ भगवान के काल से ये दो भाई रहे हैं, सूर्योदय चंद्रोदय, और चंद्रोदय का जीव तो भरत बनता है और सूर्योदय का जीव त्रिलोक मंडन हाथी बनता है। अब त्रिलोक मंडन हाथी जो था तिरियंश, तो छठे स्वर्ग का देव पशु बन गया, इसका तो दृष्टांत है। वैसे आगम के अनुसार बारहवें स्वर्ग का देव भी आयु पूर्ण करके पशु बन सकता है, लेकिन सैनी पंचेंद्रीय ही बनेगा। अब जैसे उसको पूर्व जन्म का संस्कार था तो बिना उपदेश के भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, यही हम दृष्टांत देना चाह रहे थे कि यहां से किसी ने आयु पूर्ण की, नरक चला गया अथवा देवायु से तिरियंश योनि में आ गया, अब उसको अगर जाति स्मरण हो जाए या फिर कोई ऐसी चीज देखने मिल जाए, श्रुत्वा च दृष्ट्वा च पुरा निषेविदान, जाति स्मरण किनको होता है उसके बारे में कुछ अच्छे सुंदर श्लोक हैं, जाति स्मरण हर किसी को नहीं हो सकता, कुछ उसमें बाह्य कारण होते हैं कुछ अंतरंग कारण होते हैं। बाह्य कारणों में मतलब श्रुत्वा च दृष्ट्वा च पुरा निषेविदान, पूर्व भव में जिन बातों से अपना परिचय रहा है उसको सुनकर या फिर उसको देखकर, मति ज्ञानावरण के स्मृति ज्ञानावरण भेद का क्षयोपशम होने पर एकदम पूर्व जन्म का स्मरण हुआ था, जय कुमार और सुलोचना के जीवों को हुआ था, कबूतरों को देखकर याद आ गया कि अरे हम तो उस जन्म में कबूतर थे, और फिर और भी याद आया कि हम विद्याधर विद्याधरी भी रह चुके हैं और सारी चीजें एकदम मूर्छित हो गए दोनों, और उसके बाद जब होश आया तो फिर सब वो पूर्व जन्म के सब बात करने लग गए। ऐसी और भी बहुत सारे दृष्टांत पुराणों में, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत, सुग्रीव के जीव वृषभ ध्वज राजकुमार था, और फिर राम का जीव पद्म रुचि सेठ था। तो ये सारी घटनाएं, जाति स्मरण की बहुत सारी घटनाएं आती। तो उसमें ये लिखा आचार्य उग्रादित्य स्वामी ने, अमोघ वर्ष राजा के समय एक आचार्य उग्रादित्य देव हुए हैं, उन्होंने जाति स्मरण के हेतु लिखे हैं कुछ, कि किनको होता है जाति स्मरण।